ओम शांति। हम सभी को प्यारे बाबा ने संगम युग पर चार विषय सिखाए हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान माना ही समझ। ज्ञान को हम रोशनी भी कहते हैं, ज्ञान को शक्ति भी कहते हैं। ज्ञान ही हमें सही राह दिखाता है और ज्ञान से ही हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का भी अनुभव करते हैं। जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति का अर्थ दुख, अशांति, व्यर्थ संकल्प, विकल्पों से मुक्त होना, ये बाबा ने हमें सिखाया। जितना हम ज्ञान का प्रयोग करते हैं उतना ही हमारे जीवन से ये समाप्त होते जाते हैं। हम अशुद्ध भोजन, व्यसनों से भी मुक्त हुए, क्योंकि बाबा ने शुद्ध भोजन का महत्व बताया और ये भी समझाया कि सच्चा आनंद कोई व्यसनों में नहीं है, लेकिन परमात्मा की याद में सच्ची शांति और आनंद का अनुभव है। प्रवृत्ति में रहते हैं तो प्रवृत्ति और गृहस्थी से हम ट्रस्टी बन गए। ज्ञान के आधार पर हम ट्रस्टी हैं, गृहस्थी नहीं है, वो जिम्मेवारियों के बोझ से मुक्त। संग और संबंधों का जो बंधन था उससे भी मुक्त होकर के हम परमात्म संबंध में, परमात्म संग में आ गए। ईश्वरीय संग कैसे अनुभव करना है ये बाबा ने हमें समझाया है और निरंतर बाबा के संबंध में कैसे रह सकते हैं ये भी हमें ज्ञान मिला है। तो ज्ञान से हमारे जीवन में जो स्मृतियां आई उससे बहुत बड़ा परिवर्तन हम महसूस करने लगते हैं। योग हमें शक्तियों का खजाना देता है जिससे परिवर्तन स्थायी होता है। धारणा से हमें गुणों का खजाना अनुभव होता है और सेवा से दुआओं का खजाना या खुशी का खजाना हमको मिलता है। तो जो बाबा ने हमें ये चारों विषय समझाए और उन चारों विषयों को हम अपने जीवन में जितना आगे बढ़ाते जाते हैं उतना हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनता जाता है, कितना हम उससे प्रयोग करते हैं। और उसमें से एक विशेष जो विषय बाबा ने हमें समझाया, जो ज्ञान की स्मृतियों से संबंधित है, वो हमारी श्रेष्ठता क्या है, जिसे हम स्वमान कहते हैं। जन्म पुनर्जन्म के चक्र में जब आत्मा आती है तो भूल जाती है, क्योंकि हम माया के संसार में भटक जाते हैं और मैं कौन थी, क्या थी, ये पूरी तरह से हम विस्मृत हो चुके होते हैं। तो बाबा हमें पुनः वो स्मृति दिलाते हैं कि मैं वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, वही कल्प पहले वाली देवात्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, कोटों में कोई भगवान की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हम ही विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व सेवाधारी हैं, ब्राह्मण कुलभूषण है, विश्व के आधार मूरत हैं। कितनी लंबी लिस्ट है, शायद मैं अगर अभी उसको कहूं तो पूरा एक घंटा हो जाएगा वही लिस्ट कहने में, कि कितनी स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई हैं। लेकिन बाबा ने हमें जो ऊंची नजर से देखा, इतना सम्मान दिया, ये भगवान ने ही हमें दिया, और कोई ऐसा सम्मान किसी को नहीं दे सकता दुनिया में। कोई कितना भी ऊंचा हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, ना तो वो इतने टाइटल वाला हो सकता है और ना ही वो किसी को इतना सम्मान दे सकता है जो भगवान ने हम बच्चों को दिया है। बाबा ने हमें चरणों के दास दासी से, हम जब भक्त थे तो हम कहते थे भगवान हम आपके चरणों के दास हैं, लेकिन चरणों के दास दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। सरताज बच्चे हैं हम, बाबा के राजा बच्चे हैं। बाबा हमें कहते हैं मेरे सब राजयोगी बच्चे हैं, माना राजा बच्चे हैं। और हर रोज मुरली में हमें बाबा याद, प्यार और नमस्ते कहते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन सिक व प्रेम से बाबा हमें वो याद प्यार न देते हों। और अपने आप को बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, मालिकम सलाम ये बाबा हमें कहते हैं। तो क्या हम इसे सब सुन लेते हैं, या जो बाबा हमें सम्मान देते हैं वो हम स्वीकार करते हैं? जिस नजर से भगवान हमें देखते हैं उसी नजर से हम अपने आप को देखें और इतना ऊंच श्रेष्ठ अनुभव करें, ये बाबा हमसे चाहते हैं। नहीं तो हम सभी देखने में तो बहुत साधारण आत्माएं हैं, दुनिया की नजर में कोई विशेष आत्माएं नहीं है। लेकिन साधारण आत्माओं में भी हम विशेष आत्माएं हैं, ऐसा अपने आप को अनुभव करना ये सम्मान है। यानी अपने आप को सम्मान देना बाबा ने हमें दिखाया, हमें समझाया, और जितना हम उस सम्मान की स्मृति में रहते हैं उतना ही हमें नशा रहता है, खुशी रहती है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति का अनुभव हम करते हैं, क्योंकि स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी, और स्मृति श्रेष्ठ है तो समर्थी भी आती है, स्मृति से समर्थी होती है। दुनिया में भी कहते हैं एज यू थिंक सो यू बिकम, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। तो हम वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो भी स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई है अगर वो मेरी स्मृति में रहता है तो हम धीरे धीरे उस पोजीशन पर सेट होने लगते हैं। हो सकता है हमें समय लगता है, जैसे हम अपने शास्त्रों में सुनते हैं कि हनुमान जी को ये स्मृति नहीं थी कि मैं पवन पुत्र हूँ और मैं हवा में उड़ सकता हूँ और ये समुद्र को पार करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब समुद्र के सामने सब आकर के खड़े हुए तो जैसे सबने ना कह दिया कि इतने योजन समुद्र को पार करना हमारे लिए संभव नहीं है, ऐसे ही उन्होंने भी कह दिया। लेकिन जो जामवंत थे वो जानते थे कि हनुमान की शक्ति क्या है, तो उन्होंने उसको याद दिलाया कि तुम भूल गए हो तुम कौन हो, तुम तो एक छलांग लगाओगे तो समुद्र को पार कर सकते हो, इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर। तो जब उनको स्मृति आई तो उन्होंने वो कर दिखाया जो असंभव था। तो यानी असंभव को संभव करने की शक्ति भी हम में तब आती है जब वो स्मृति हमारे में है। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी है, हालांकि ये शास्त्रों की बोध कथा है, लेकिन बहुत उसमें वो सार है जो बाबा हमें स्मृतियां दिलाते हैं और कैसे हम धीरे धीरे अपने उस स्वरूप में फिर स्थित होते जाते हैं। तो एक शेर का छोटा बच्चा अपनी मां से बिछुड़ गया, वो भटक गया जंगल में, और जंगली भेड़ों का जो झुंड था उसमें आकर के वो मिल गया। तो जो भेड़ों की मुखिया थी उसने देखा कि ये छोटा बच्चा है, हालांकि अलग दिखता है थोड़ा, लेकिन उसने उसे भेड़ों के झुंड में ही शामिल कर लिया। तो वो भेड़ का जो शेर का बच्चा था वो भेड़ों के झुंड में पलने लगा। तो जैसे भेड़े मिमियाती थी, अब उसने भी मिमियाना सीख लिया क्योंकि वो भेड़ों के बीच में ही रह रहा था। भेड़े घास चरती थी तो उसने भी घास चरना ही सीख लिया। लेकिन जैसे वो बड़ा होने लगा तो उसकी बॉडी की शेप अलग थी क्योंकि वो तो शेर था, भेड़ तो था नहीं। तो जो दूसरी भेड़े उसको देखती थी, अब उसको खुद को तो नहीं पता था कि मेरी बॉडी अलग है, वो तो अपने को भेड़ी समझने लगा। लेकिन दूसरी भेड़े जब देखती थी तो उसे वो अलग लगता था, तो वो उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, देखो इसका मुंह कैसा है, देखो इसकी पूंछ कैसी है, ये चलता कैसे है ऐसे। तो उसको बड़ी हीन भावना होने लगी कि क्या ऐसी बात है मुझ में जो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं और ये सब मेरे से नफरत करते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता। तो उसको ऐसा लगने लगा कि मैं कहीं चला जाऊं यहां से। लेकिन जो मुखिया भेड़ थी वो हमेशा उनको समझाती थी कि गहरे जंगल में कभी मत जाना, वहां शेर रहता है और वो शेर भेड़ों को खा जाता है, तो कभी गलती से भी उधर गहरे जंगल में नहीं जाना। तो वो सोच के वो डर जाता था कि मना किया है जंगल में नहीं जाना, शेर खा जाएगा। पर एक दिन जब वो बहुत ही दुखी हो गया सुन सुन करके, तो उसने सोच लिया कि भले ही मुझे शेर खा जाए, लेकिन मुझे आज जंगल में जरूर जाना है, मुझे यहां से तो मुक्ति पाना है। तो वो चला गया और जंगल में जब गया तो उसको बहुत प्यास लगने लगी, तो वो ढूंढने लगा कहाँ पानी मिलेगा। तो ढूंढते ढूंढते एक छोटा सा तालाब कहीं था, वहां पहुंचा वो और पानी पीने लगा। तो वो जो जंगल का शेर था वो भी वहां पानी पीने आया, तो उसने तो देखा कि एक दूसरा शेर भी पानी पी रहा है, तो सहज भाव से वो पानी पी रहा था। लेकिन जब ये जो शेर बच्चा था, जब इसने देखा गर्दन उठा करके और उसने उस शेर को देखा, तो एकदम डर गया क्योंकि वो तो अपने को भेड़ समझता था और पक्का हो गया कि ये शेर मुझे खा जाएगा। तो डर के मारे एकदम कांपने लगा बुरी तरह से। लेकिन उसने देखा कि वो शेर तो उसे बहुत अच्छे से देख रहा है। तो वो शेर ने उसको पूछा कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, तो उसने मिमियाना शुरू किया। तो उसको हंसी आ गई, उसने कहा कि तुम शेर होकर के भेड़ जैसी आवाज निकाल रहे हो क्यों। तो उसने कहा मैं भेड़ हूं। तो उसने कहा तुमको किसने कहा तुम भेड़ हो। उसने कहा मुझे पता है मैं भेड़ हूं। तो उसने कहा नहीं तुम तो शेर हो। तो उसने कहा कि नहीं मैं तो भेड़ हूं। फिर मिमियाया उसने, वो शेर फिर हंसने लगा। तो उसने उसको पानी में कहा तुम अपनी शक्ल देखो, तुम्हारी शक्ल मेरी शक्ल जैसी है। तो उसने देखा पानी में, तो देखा कि उसकी जो शक्ल थी वो उस शेर से मिलती थी। तो उसने उसको फिर समझाया कि तुम शेर हो, शेर मिमियाते नहीं है, शेर दहाड़ते हैं। तो उसने दहाड़ के बताया उसको दहाड़ना क्या होता है। तो वो और डर गया इतनी तेज आवाज सुन करके, क्योंकि उसने कभी दहाड़ने की आवाज सुनी नहीं थी। तो फिर उसने उसको बोला तुम दहाड़ो ऐसे जैसे मैंने किया है, तो उसने फिर मिमी आया क्योंकि उसको दहाड़ना आता ही नहीं था। उसने कोशिश भी की तो भी वो आवाज नहीं निकाल सकता था। तो शेर ने उसको कहा, समझाया कि तुम शेर हो और जैसे मैं आवाज निकालता हूँ वैसे तुम निकाल सकोगे, लेकिन तुम रोज इस तालाब में आकर के अपनी शक्ल देखो और अपने को याद दिलाओ कि मैं एक शेर हूँ, मैं भेड़ नहीं हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ तुमको कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। तो उसने कहा ठीक है, क्योंकि वो तो वैसे भी भेड़ों से मुक्त होना चाहता था, वहां तो वो बहुत तंग हो चुका था, अब यहाँ उसका वो ओरिजिनल रूप उसे बहुत अच्छा लगा कि सचमुच मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। और शेर देखो कितना शानदार, कितना बड़ा जानवर है, और देखो कैसी आवाज निकालता है, क्योंकि वो उसका रियल रूप था तो उसे वो पसंद आ रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत सालों से वो भेड़ों के बीच में रह रहा है। तो अब उसको वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब वो कर पाएगा, इतनी जल्दी उसका मियाना जाएगा नहीं। तो उसने रोज जंगल में बैठ करके दहाड़ने की प्रैक्टिस करना शुरू किया, कई सौ बार उसने किया तब जाकर के वो थोड़ी सी ऊंची आवाज निकाल पाया। और धीरे धीरे कुछ महीनों में वो अच्छी तरह दहाड़ पाया और इतना खुश हुआ कि हाँ सचमुच अब मैं कह सकता हूँ कि मैं एक शेर हूँ और मैं भेड़ नहीं हूँ। तो वो भेड़ से ऐसा नहीं कि वो शेर नहीं था, ओरिजिनली तो वो शेर ही था, लेकिन क्योंकि वो भटक गया और भेड़ों के बीच में आया तो भेड़ ही बन गया। लेकिन उसको ओरिजिनल शेर के रूप में आने में भी समय लगा, एकदम से वो शेर के स्वरूप में नहीं आ गया हालांकि वो शेर था। तो यहाँ भी बाबा जब हमें स्मृति दिलाते हैं तो इतना जल्दी पहले तो हम स्वीकार ही नहीं करते कि सचमुच हम हैं, जैसे वो स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि मैं शेर हूँ, पहले तो भेड़ हूँ ऐसे ही कर रहा था। तो हमको भी बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो, तो वो आत्मा समझने में भी हमें मेहनत लगती है, पहले तो हमें स्वीकार नहीं होता। और फिर मैं कौन सी आत्मा हूँ ये भी बाबा समझाते हैं, मैं ही देवात्मा हूँ, तो हम सोचते हैं मैं कहाँ से देवात्मा होंगी, कोई तो लक्षण नजर नहीं आते कि मैं देवात्मा हूँ, या मैं ही इतनी पवित्र श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं ही पूछे आत्मा हूँ, इतनी महान आत्मा हूँ, क्या सचमुच मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संदेह भगवान के उन महावाक्यों में होता है जो वो हमें स्मृति दिलाते हैं, पर बाबा को पता है हम हैं, क्योंकि उन्होंने वो तीनों कालों को जानते हैं, पूरे सृष्टि चक्र को जानते हैं, लेकिन हम तो माया के वश होकर के भटक चुके हैं और पूरी तरह से भूल चुके हैं अपने आप को। तो फिर हमें बार बार अपने आप को वो स्मृति दिलानी होती है, तब हम स्मृति स्वरूप की स्थिति में आते हैं। यदि हम रोज अभ्यास नहीं करेंगे, जैसे उसने अभ्यास किया तब वो शेर के स्वरूप में फिर आया। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि रोज अपने स्वमान को स्मृति में रखो, हर रोज हमें अपना एक स्वमान जो मुरली में ही बाबा देते हैं, हर रोज की मुरली में हमें मिल जाता है, कोई ना कोई स्वमान मिल जाता है, उस स्वमान को भी सारा दिन अगर हम अभ्यास करते हैं, मानो घंटे में 5 बार भी मैंने उस स्वरूप में स्थित होकर के अभ्यास कर लिया, मानो मैं देवात्मा हूँ, बाबा हमें यही स्मृति दिला रहे हैं, और हर घंटे में 5 बार, चाहे एक समय ही, पूरा समय मैं व्यस्त हूँ पर एक घंटे में 2 मिनट निकाल करके भी मैंने अपने वो स्वरूप की स्मृति लाई कि मैं देवात्मा हूँ और उस स्वरूप में स्थित हुए, केवल रटना नहीं है उसको लेकिन अनुभव करना है कि मैं देवात्मा हूँ, तो आप महसूस करेंगे कि कितना श्रेष्ठ आप अनुभव करते हैं और कैसे वो दैवी संस्कार आपके इमर्ज होने लगते हैं जब आप सारा दिन बार बार वो स्मृति अपने में लाते हैं। वो देवताई संस्कार स्वतः हमारे कर्म में आने लगते हैं। और ऐसा ही अभ्यास ब्रह्मा बाबा ने किया, तब बाबा संपन्न और संपूर्ण बने। ब्रह्मा बाबा को यदि हम फॉलो करते हैं तो बाबा न सिर्फ स्वमान में रहे, लेकिन बाबा ने सबको सम्मान भी दिया, क्योंकि जो स्वमान में रहने वाला है वो दूसरों को सम्मान देता है और सम्मान पाता भी है। स्वमान की स्थिति स्वतः ही सम्मान को आकर्षित करती है। लेकिन हम देवता बनने वाले हैं तो देवताएं देने वाले दाता होते हैं, ये अपेक्षा नहीं रखते कि वो मुझे सम्मान देवे, मैं इतनी ऊंच श्रेष्ठ आत्मा हूं तो दूसरा मुझे सम्मान देवे, नहीं, लेकिन पहले मुझे सम्मान देना है। तो बाबा ने हर आत्मा को, जो भी आत्मा बाबा के संपर्क में आई, उसको उसके आधार पर सम्मान दिया। बच्चों से बाबा मिलते थे तो बहुत सम्मान का स्नेह बच्चों को देते थे और हमेशा उनको इस नजर से देखते थे कि ये ही होवनार विश्व कल्याणकारी हैं, और वो आज हमारी दादियां हैं। वो छोटे छोटे जो बच्चे थे बाबा के सामने, आज सचमुच वो विश्व का कल्याण कर रहे हैं। अब तक भी कितनी बार वो विश्व का चक्कर भी लगा चुके हैं, जबकि उस समय वो जानते नहीं थे कि विश्व क्या है, ये भी नहीं जानते थे। तब भगवान ने उन्हें इतनी ऊंची नजर से देखा और वो आशाएं उन बच्चों में रखी, तो वो स्वमान साकार हो गया। ऐसे ही कुमार कुमारियों को बाबा ने सदा इस सम्मान से देखा कि ये मेरे वो बच्चे हैं जो असंभव को भी संभव करने वाले हैं। यानी दुनिया जिसे असंभव समझती है, जिस पवित्रता को उस आयु में दुनिया असंभव समझती है, ये मेरे बच्चे वो संभव करके दिखाने वाले हैं और महान आत्माओं के सिर झुकाने वाले हैं, उनके आगे नतमस्तक होंगे। या जो आज की महान आत्माएं कहलाने वाले हैं उनके भी सिर झुकाने वाले, जैसे बताया है ना। ऐसे ही बाबा ने अपने समान आयु के जो बुजुर्ग थे उनको हम जींस आत्माएं, मेरे समान ये अनुभवी आत्माएं हैं, उनके सम्मान से देखा। और जो भी बांधेलियां थी, बांधेले थे, उनको हमेशा बाबा ने ये समझा कि ये याद में नंबर वन है, इनकी लगन जो छुटेले हैं उनसे बहुत ज्यादा है, इनकी योग की पावर बहुत अधिक है। तो हमेशा उस तरह से बाबा ने उनको सम्मान दिया। तो जिस तरह से, जिस नजर से आदि पिता ने हमें देखा, उसी तरह से हमें भी उनको दूसरों को देखना है जो भी हमारे संपर्क में आते हैं। तो बाबा की ये सम्मान की नजर देही अभिमानी स्थिति सदा रहने के कारण रही। जब हम देही अभिमानी बनते हैं तभी हम स्वमान में रह पाते हैं और दूसरों को सम्मान दे पाते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं हम अभिमान में आते हैं तो दो बातें होती हैं। अभिमान में आते हैं तो स्वमान छूट जाता है और अपमान की फीलिंग हमें आती है। किसी ने जरा भी कुछ कह दिया तो तुरंत हमें अपमान फील होता है। और हम परिवार में रहते हैं, व्यवहार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, ऐसा कभी होगा नहीं कि कोई हमें कुछ कहेगा नहीं। हर दिन कोई 10 लोग मेरे सामने आ जाएंगे जो कोई ना कोई ऐसी बात कर देंगे या कह देंगे जिससे मुझे अपमान फील हो जाएगा, अगर मैं स्वमान में नहीं हूं। और यदि हम स्वमान में हैं तो फिर कोई गाली देने वाली भी आत्मा है, कोई मेरी निंदा करने वाली भी आत्मा है, कोई मेरे अपमान करने वाली भी आत्मा है, तो भी उसके प्रति हमारा सम्मान का भाव रहेगा, हम उसे दे सकेंगे। लेने की इच्छा नहीं रखेंगे लेकिन देने की शक्ति हमारे अंदर होगी। ये स्वमान से वो शक्ति हमें आती है। तो हमें अगर अपने अभिमान की चेकिंग करनी है कि हम स्वमान में हैं या अभिमान में हैं, तो उसकी कुछ निशानियां हैं। मानो अगर अभिमान आ जाता है तो हम हमेशा अपने आप को ही सही समझते हैं, अपनी बात को हम ज्यादा महत्व देते हैं, दूसरे की बात को हम सुनना नहीं चाहते, उनके विचारों को हम सम्मान नहीं देते। हालांकि उनकी राय भी अपने नजरिए से सही हो सकती है, उनके विचार भी अपने नजरिए से सही हो सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का किसी भी स्थिति को देखने का नजरिया अपना अपना होता है। मैं जो सोच रही हूं मैं अपनी तरह से राइट हूं, लेकिन जो दूसरा सोच रहा है वो अपनी तरह से राइट है। तो ये विचारों को सम्मान देना, ये स्वमान है कि मैं अपने विचारों को भी सम्मान देती हूं और जो दूसरे अगर कोई राय देते हैं तो उनको भी हम सम्मान देते हैं। अगर उनकी राय मानने जैसी है तो उनको मानते भी हैं। लेकिन अगर हम मैं ही राइट हूं, मेरी ही बात मानी जानी चाहिए, इसको हम कहते हैं दूसरों को कंट्रोल करने की हम कोशिश करते हैं या दूसरों पर राज्य करने की कोशिश करते हैं, तो ये अभिमान का अंश है। ऐसे ही अगर अभिमान है हमारे अंदर तो हम अपनी गलती नहीं मानते हैं। गलती हम सबसे होती है, श्रीमत के विपरीत कुछ भी भूल हो गई हमसे वो गलती है, लेकिन हम उसमें सिद्ध करते हैं या जिद करते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया लेकिन इसने ऐसा किया ना, इसलिए हो गया। फिर दूसरों की शिकायत हम करते हैं, हमारी उंगली दूसरे की ओर जाती है, मैं नहीं ये, और आप इसको तो कुछ नहीं कहते हैं, मुझे कहते हैं। तो अगर मैं सिद्ध और जिद और बहस में चली जाती हूं, सीधी सी बात है मेरे से कोई गलती हुई, अंदर में हम सभी जानते हैं, लेकिन हम कई बार अपना नाम नहीं खराब करना चाहते, अपने आप को कमजोर नहीं सिद्ध करना चाहते, तो हम इसका सहारा लेते हैं। तो बाबा कहता है कि ठीक है, उस समय आपने अपने आप को सिद्ध भी कर लिया, मानो आपकी बात मान ली भी गई, लेकिन भगवान तो सच्चाई जानता है ना, तो आप विजयी नहीं हुए। देखने में मैं विजयी हो गई, अपनी बात को मैंने सिद्ध कर लिया, लेकिन भगवान के सामने तो मैं जन्म जन्मांतर के लिए उसमें हार की श्रेणी में आ गई, उसके विजय माला के हार में हम नहीं आएंगे। लेकिन इस समय अगर मैंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, मानो ऐसा लगता है कि हम हार गए इस स्थिति में, मैं कमजोर हो गई या मेरा नाम थोड़ा कम हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के दल पर अगर मैंने सच्चाई स्वीकार कर ली, मेरा दोष है, मेरी गलती है, ये हमारी नम्रता होती है। और जो स्वमान वाला होगा वो हमेशा यदि उससे कोई गलती हो गई तो उसे वो सहर्ष स्वीकार कर लेंगे और आगे के लिए करेक्शन कर लेंगे, अपने आप को चेंज कर लेंगे, जिसको बाबा कहते हैं चेक और चेंज करना। उनकी रियलाइजेशन पावर बहुत अच्छी होती है, तुरंत ज्ञान के अनुसार रियलाइज हो जाएगा कि हाँ ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, माना नहीं करना है। और अगर अभिमान है तो अभिमान वाला दूसरे की तारीफ को सहन नहीं कर सकता। अगर आपके सामने किसी की महिमा की जा रही है तो क्योंकि हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, उल्टे रूप से श्रेष्ठ समझते हैं, स्वमान वाली श्रेष्ठता नहीं, जो देह अहंकार वाली श्रेष्ठता होती है ना, अगर उस तरह से हम श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर किसी की भी तारीफ सुनकर के ईर्ष्या होगी, अच्छे भाव मन में पैदा नहीं होंगे और उनकी हम तुरंत कमी निकाल के बताएंगे, अरे आप जानते नहीं हो उनको, आप इतनी महिमा कर रहे हो पर हम जानते हैं उनको वो कैसे हैं। तो हम नहीं स्वीकार कर पा रहे क्योंकि वो स्वमान, अपने मान के लिए हम दूसरों पर निर्भर हैं कि वो मेरी श्रेष्ठता को हमेशा स्वीकार करें। और क्योंकि अभी मेरे सामने किसी दूसरे की श्रेष्ठता की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हीन भावना हमारे अंदर पैदा होने लगती है और हम अपने आप को सिद्ध करना तुरंत शुरू कर देते हैं कि देखो हम कितने श्रेष्ठ हैं, तो ये भी अभिमान की निशानी होती है। तो स्वमान वाला जो है वो सदा ही दूसरे की श्रेष्ठता को भी, दूसरे की विशेषताओं को भी सम्मान देता है और स्वयं भी उसकी तारीफ करता है। दूसरों से सुनकर ही डिस्टर्ब नहीं होते, लेकिन स्वयं भी उसकी महिमा करते हैं कि हाँ सचमुच, क्योंकि बाबा ने हमें गुणग्राही बनाया है। बाबा ने हमेशा हमें ये सिखाया है कि हमें दूसरों के गुण दर्शन करने हैं, उनकी विशेषताओं को ही देखना है, किसी की कमियों को हमें नहीं देखना है। तो ये स्वमान की स्थिति है। तो जितना हम स्वमान का अभ्यास हर दिन करते हैं अपनी दिनचर्या में, उतना नशे और खुशी का अनुभव हम करते हैं। लेकिन माया या विपरीत परिस्थितियां जो आती हैं हमारी दिनचर्या में, वो हमें उस नशे से उतार देती हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, दुनिया में भी कोई सीट पर होते हैं, पोजीशन पर होते हैं, तो उनकी ओपोजिशन पार्टी उनके पीछे लगी रहती है, उनकी टांग खींचती रहती है कि आप इस पोजीशन पर कैसे बैठे हो, तो वो तो उतार ही देते हैं उनको। लेकिन यहां माया हमारी ओपोजिशन पार्टी है और हमें स्वमान की सीट से उतारने में देरी नहीं करती और हम शान से परे परेशान हो जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। क्यों, क्या, कैसे, कि क्यों में अगर हम चले गए, कोई भी परिस्थिति आई तो उसमें हमने ये प्रश्न करना शुरू कर दिया, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे पर ही इतने विघ्न क्यों आते हैं, मेरे ऊपर ही इतनी समस्याएं क्यों हैं, मैं इतना पुरुषार्थ करना चाहती हूं लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाती हूं, कैसे, मतलब अगर हम उसमें व्यर्थ संकल्पों में चले गए तो हम तुरंत अपने स्वमान की सीट से नीचे उतर जाते हैं। और कई बार वो व्यर्थ संकल्प एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, वो छोटी छोटी बातें भी हमें इतना उलझाए रखती हैं सारा दिन। बातें कोई बड़ी नहीं होती हैं कई बार। बाबा तो हमेशा कहता है कि अपनी बिंदु रूप की स्थिति में स्थित हो जाओ, हाई जंप लगा दो। जैसे हवाई जहाज ऊपर उड़ता है तो नीचे की चीजें कैसे दिखती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी दिखती हैं, कोई पहाड़, नदियां, कुछ भी हैं, वो हवाई जहाज के लिए कुछ नहीं है, वो कोई विघ्न नहीं है, उसके लिए कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो बाबा भी हमें ये कहते हैं कि आपने फुल स्टॉप लगाया, फुल स्टॉप क्या लगाना है, दो बातों का फुल स्टॉप बाबा ने हमको सिखाया है। किसी भी बात को अगर व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप देना है, जो हो रहा है बहुत अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि संगम युग कल्याणकारी युग है, बाप कल्याणकारी है, किसी भी बात में अकल्याण हो ही नहीं सकता। जैसे ही मैंने ये चिंतन किया, जो भी कुछ बुरा है उसको क्या लग जाता है, फुल स्टॉप। मेरे पार्ट के अनुसार ये जो भी घटना हो रही है उसमें ही मेरा कल्याण है, यही कोई मेरा हिसाब किताब खत्म हो गया, मेरा कर्ज समाप्त हो गया, मैं आत्मा इस बंधन से मुक्त हो गई। तो यदि मैंने उसमें भी, मतलब उसमें कोई छुपा हुआ जो अच्छाई है, बाबा कहता है उसको ढूंढने की शक्ति हमें ज्ञान देता है, तो वो मैंने प्रयोग कर लिया और जैसे ही मैं ऊंची स्थिति पर आई वो बात वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसका दूसरा पक्ष देख लिया। जो विघ्न उत्पन्न करने वाला पक्ष है वो मुझे दुख दे रहा है, उससे मैं अशांत हो रही हूँ, उससे मैं परेशान हो रही हूँ, लेकिन ज्ञान के अनुसार बाबा ने जो मुझे नजरिया दिया, जैसे ही मैंने वो देखना शुरू किया फिर से मैं अपने स्वमान में स्थित हो सकती हूँ। तो ये हमारे पेपर हैं, इन पेपरों को तो हमें पास करना ही है, क्योंकि माया तो जैसे वो ऑपोजिशन पार्टी वाले छोड़ते नहीं है, यहाँ भी माया भी हम बाबा के बच्चों को इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। तो इससे हमें जागृत रहना है और जो भी अलबेलेपन में आकर के हम फिर से विस्मृति में आ जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, उसे फिर से हमें स्मृति में ले आना है। तो ये हम अपनी दादियों में भी देखते हैं, हमारी दादी, खासकर मैं बड़ी दादी के साथ रही हूँ काफी वर्षों तक, तो मैं हमेशा देखती थी कि दादी स्वयं कितना स्वमान में रहते थे और जो भी दादी से मिलने भी आती थी आत्माएं, उनमें भी वो इतना हिम्मत, आशा, उत्साह का संचार कर देती थी, जैसे उनके बोल वरदानी बोल होते थे और जो भी मिलने वाले होते थे वो वैसे ही ऊंची स्थिति का अनुभव करते थे दादी जी से मिलकर, क्योंकि बाबा को हमने नहीं देखा, बाबा का हम सुनते हैं, लेकिन दादियों को तो आज हम प्रत्यक्ष में देखते हैं कि उनकी दृष्टि से ही हमारी स्मृतियां जागृत हो जाती हैं, कि दादी से हमें दृष्टि मिली तो ही हम उस रूहानी स्थिति में, उस ऊंची स्थिति का हम अनुभव करने लगते हैं। तो जो स्वमान वाला है वो हमेशा गिरे हुए को ऊपर उठाएगा, किसी भी गिरे हुए को दोबारा और नहीं गिराएगा। दुनिया में क्या स्वभाव होता है, कोई गिरा है तो 10 बात और बोल करके उसे और गिरा देंगे, किसी को ठोकर लगी है तो 4 ठोकर और लग जाएगी उसको, लेकिन स्वमान माना हम बाबा के बच्चों का ये फर्ज है कि चाहे वो अवगुण वाली आत्मा है, चाहे वो माया के वश आत्मा है, चाहे वो दोषी आत्मा है, लेकिन फिर भी अपने स्वमान की शक्ति से उनको गुणवान बनाना, उनको हिम्मतवान बनाना, उसके अंदर आशा का संचार करना, उसका स्वमान जागृत कर देना, उसे भी उस ऊंची स्थिति का अनुभव कराना, लेकिन वो तब होगा जब हम स्वयं स्वमान में स्थित होंगे और दूसरों को भी हम पहले सम्मान देंगे, इच्छा नहीं रखेंगे लेकिन दूसरों को भी हम सम्मान देंगे। ओम शांति। Thank you.
छपी